नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और इसके प्रचार तथा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
ये योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। ये योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1000 से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, जो लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8,66,00,000 से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालत अरावली पर्वतमाला में खनन और इससे जुड़े पहलुओं की व्यापक और समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा। न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को 4 सप्ताह के भीतर खनन में विशेषज्ञता रखने वाले पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश में तार्किक विसंगतियों और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया है। साथ ही प्रभावित मतदाताओं की परेशानियों की सुनवाई और निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने का अवसर प्रदान किया गया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और सभी जिला प्रशासन अधिकारियों को SIR के दौरान कड़ी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। नीति आयोग ने सीमेंट, एल्यूमिनियम और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम MSME क्षेत्रों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की कार्य योजना प्रस्तुत की है। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि भारत के विकास में MSME क्षेत्र और सतत आर्थिक विकास की भूमिका बेहद अहम है। इस बीच नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि एल्यूमिनियम और सीमेंट क्षेत्र सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाले क्षेत्रों में से हैं, जो औद्योगिक उत्सर्जन में योगदान करते हैं। विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। तेलंगाना पुलिस ने देशभर में सक्रिय CPI माओवादी की अलग अलग समितियों के सरगना से आत्मसमर्पण करने को कहा है। नो मोर कॉन्फ्लिक्ट लव योर विलेज, यानी अब और संघर्ष नहीं, अपने गांव से प्यार करो के नारे के साथ तेलंगाना पुलिस ने माओवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। राज्य के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने माओवादियों को आश्वासन दिया कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति के अनुसार उन्हें पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें डिजिटल रूप से छेड़खानी कर भारत और तालिबान के बारे में उनके झूठे बयानों को दर्शाया गया है। सरकार ने कहा है कि इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। भारत ने नेपाल को चुनाव संबंधी सहायता की पहली किश्त हस्तांतरित की है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने यह सहायता नेपाल सरकार के अनुरोध पर वहां के गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्याल को सौंपी। इनमें 61 डबल कैब पिकअप वाहन तथा अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। श्री आर्याल ने कहा कि ये वाहन चुनाव के सुचारू और प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सहयोग दोनों देशों के बीच मौजूद बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय विकास साझेदारी को दर्शाता है। और खेलों में भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया है। भारत ने 238 रन का लक्ष्य दिया था, जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।